ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कुंती महारानी की प्रार्थना, ये आखिरी श्लोक है जिसकी चर्चा हम आज करेंगे, श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के आठवें अध्याय में। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णि, श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णि ऋषभावनिध्रो, राजन्यवंशदहनानपवर्ग वीर्य, गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार, योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते, श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णि ऋषभावनिध्रो, राजन्य वंश दहनानपवर्ग वीर्य, गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार, योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते, श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राज नीतिक दलों के ध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी घटता नहीं। आप परम धाम के स्वामी हैं और आप गायों ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक या गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूं। अनुवाद को दोहराइएगा। हे श्री कृष्ण, ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कुंती महारानी की प्रार्थनाओं का ये आखिरी श्लोक है। इसमें कुंती महारानी अपनी सारी प्रार्थनाओं का सार दे रही हैं। भगवान श्री कृष्ण जो कि इस जगत में उपस्थित हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो वैकुंठ जगत में उपस्थित हैं उन दोनों को संबोधित करती हैं। हैं तो दोनों एक ही, वही एक कृष्ण हैं जो अपने निज धाम गोलोक वृंदावन से यहां पर प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में। तो कुंती महारानी भगवान कृष्ण के दोनों भूमिकाओं को, दोनों लीलाओं को का स्मरण यहां पर कर रही हैं। सबसे पहले वो श्री कृष्ण को संबोधित करती हैं कि हे कृष्ण, श्री कृष्ण शब्द से, और तुरंत वो कृष्ण सख कहती हैं। कृष्ण सख मतलब अर्जुन। कृष्ण ये न केवल श्री कृष्ण भगवान कृष्ण का नाम है, लेकिन कृष्ण अर्जुन का भी एक नाम है। आप ये जानते थे? अर्जुन का भी एक नाम है कृष्ण, इसलिए यहां पर है कृष्ण सख। तो कृष्ण सख कौन हुए? कृष्ण। तो कृष्ण के सख कृष्ण। तो यहां कृष्ण सख मतलब अर्जुन। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, ऐसे कुंती महारानी कृष्ण को संबोधित कर रही हैं। क्यों ऐसा कह रही हैं? अर्जुन को बीच में क्यों ला रही हैं? क्या कारण हो सकता है? घनिष्ठ संबंध। कुंती महारानी जानती हैं वो तो अर्जुन की मां है खुद, और कुंती महारानी का श्री कृष्ण के साथ बहुत निकट का प्रेम का संबंध है, और लौकिक दृष्टि से भी वो मां तुल्य है, माता तुल्य है। लेकिन फिर भी वो जानती हैं कि हालांकि उनका संबंध कृष्ण के साथ निकट है, फिर भी अर्जुन का संबंध कृष्ण के साथ और भी घनिष्ठ है। अर्जुन के प्रिय मित्र हैं श्री कृष्ण, इसलिए वो यहां पर श्री कृष्ण कृष्ण सखा कह के संबोधित करती है। साथ साथ श्रील प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि द्रौपदी का नाम है कृष्णा। आ लग जाता है तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। कृष्ण मतलब अर्जुन और कृष्णा मतलब द्रौपदी। द्रौपदी भी भगवान कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध रखती हैं, भक्ति का, प्रेम का। वो सख्य रस में है, हालांकि वो महिला रूप में है, फिर भी एक भाई रूप में वो श्री कृष्ण को देखती थी और प्रेम करती थी। तो द्रौपदी को स्वयं श्री कृष्ण ने वस्त्र हरण के समय, जो राजसभा में जो वस्त्र हरण हुआ उस समय बचाया था, और अलग अलग समय पर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और उनके पतियों की रक्षा की थी। जैसे जिस समय जब दुर्वासा मुनि वहां पर आए थे जंगल में, तो कृष्ण ही है जिन्होंने उनकी लाज बचाई थी सबकी, और दुर्वासा मुनि वहां पर चले गए थे। कृष्ण ने अक्षय पात्र में से एक कण प्रसाद का ले लिया और वो संतुष्ट हुए, और दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्यों का पेट इतना भर गया कि वो वहां से जल्दी निकल पड़े, भोजन के लिए आए ही नहीं। तो यहां कृष्ण सख मतलब अर्जुन के मित्र तथा द्रौपदी के मित्र भी। बाद में यहां पर कुंती महारानी कहती हैं, वृष्णि ऋषभ। ऋषभ मतलब श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। वृष्णि वंश के सर्वश्रेष्ठ सदस्य, वृष्णि वंश के नेता। वृष्णि नाम के कई राजा रहे हैं इतिहास में, उनमें से एक महान थे वृष्णि महाराज। वैसे वृष्णि वंश में भी दो वृष्णि राजा रहे हैं, कृष्ण के जो पूर्वज हैं वो दो वृष्णि रहे, लेकिन एक ही जो महान प्रसिद्ध वृष्णि हैं उनके वंश में आने वाले, इसलिए इनको वृष्णि वंश प्रदीपक, वृष्णि वंश को प्रदीप दिखलाने वाले, इनका गौरव बढ़ाने वाले। हम पहले भी सुन चुके हैं कि कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं श्री कृष्ण से कि वो यदुकुल में प्रकट हुए हैं, जैसे मलय जंगल में या पर्वत में चंदन होता है, मलयस्येव चंदनम। वैसे चंदन के गुण मलय पर्वत से, मलय जंगल से भिन्न है। मलय एक चीज है और चंदन दूसरी चीज है, लेकिन क्योंकि ये चंदन मलय पर्वत में पाया जाता है इसलिए इसको मलय चंदन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से वृष्णि वंश एक है और श्री कृष्ण भिन्न है। श्री कृष्ण अपने निराले स्थान में हैं। वैसे देखा जाए तो श्री कृष्ण को किसी भी इस दुनिया के वंश से लेना देना नहीं है, वो किसी भी वंश के नहीं हैं। कभी जब श्री कृष्ण यहां प्रकट होते हैं तो कभी ब्राह्मण बन के आते हैं, कभी क्षत्रिय बन के आते हैं। ब्राह्मण रूप में जब आते हैं, कोई अवतार है, कोई अवतार बोल सकते हैं, वामन अवतार एक उदाहरण है, और क्षत्रिय परशुराम जी तो ब्राह्मण कुल में आए लेकिन क्षत्रिय का कार्य किया उन्होंने। श्री राम क्षत्रिय कुल में जन्म लिए। तो ज्यादातर भगवान जब अवतार लेते हैं तो या तो ब्राह्मण या मनुष्य समाज में, या ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ग में आते हैं, तो किसी एक वंश को स्वीकार करते हैं। जब जन्म लेते हैं तो किसी न किसी वंश में तो जन्म लेना है ना, तो इसलिए किसी न किसी एक वंश को स्वीकार करते हैं। वैसे भगवान तो न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है न कुछ, क्योंकि ये ब्राह्मण क्षत्रिय आदि ये जो वर्ग हैं, ये विभाजन है, ये इस दुनिया के लोगों के लिए है जो इस दुनिया में जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो इस दुनिया में जन्म नहीं लेते, केवल प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य उदित होता है और अस्त होता है, तो श्री कृष्ण का प्राकट्य सूर्य के उदय के समान है और उनका तिरोभाव सूर्य के अस्त होने के बराबर है। तो भगवान श्री कृष्ण को न किसी वर्ण से न किसी आश्रम से संबंध है, उनको इस दुनिया की किसी भी चीज से, व्यक्ति से, घटना से संबंध नहीं है, और उसी प्रकार से उनको इस दुनिया के कोई भी वंश से संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी ये इनकी लीला है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनको प्रकट होना है, और ये इनकी कृपा है उस वंश के सदस्यों के ऊपर और विशेष करके उनके पूर्वजों के ऊपर, क्योंकि उनके पूर्वजों की ख्याति बढ़ जाती है। क्योंकि अब हम सब याद करते हैं, एक वृष्णि महाराज थे, एक यदु महाराज थे, क्योंकि कृष्ण उनके परिवार में प्रकट हुए इसलिए हम उन पूर्वजों को भी याद करते हैं कृष्ण के साथ साथ, क्योंकि ये कृष्ण के भक्त हैं, तो कृष्ण चाहते हैं कि अपने भक्त का गौरव बढ़ाएं, तो इसलिए उनके अलग अलग नाम है। वृष्णि वंश प्रदीप, जैसे महाराज कुरुशेखर प्रार्थना करते हैं, तो यहां कुंती महारानी वृष्णि ऋषभ कहके श्री कृष्ण को भी संबोधित करती हैं। आगे चल के वो कहती हैं, अवनी ध्रुक राजन्य वंश दहन। अवनी मतलब पृथ्वी, ध्रुक मतलब जो विप्लवी लोग होते हैं, जो विरोध करने वाले लोग होते हैं, उपद्रव करने वाले लोग होते हैं। राजन्य वंश दहन, राजन्य वंश मतलब जितने भी क्षत्रिय वंश हैं, राजन्य वंश जो क्षत्रिय कुल हैं, परिवार हैं, दहन नाश करने वाले, तो आप उन सब राजाओं को खत्म करने वाले हैं जो कि यहां उपद्रव करते हैं इस पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी माता को उपद्रव कष्ट देते हैं, पृथ्वी माता के ऊपर आप बोझ बन के बैठे हैं, ऐसे राजाओं के विनाश करने वाले हे कृष्ण, ऐसे संबोधित करती हैं कुंती महारानी। राजाओं का पृथ्वी लोक के ऊपर होना आवश्यक है, क्योंकि राजा नहीं होगा तो समाज चलेगा नहीं। वैसे राजा को बहुत सम्मान दिया जाता है और ये एक धार्मिक चीज है, जो भी सच्चा राजा होता है उसको बहुत सम्मान देना चाहिए। क्यों ऐसा? एक दृष्टि से देखा जाए तो राजा और प्रजा दोनों मनुष्य हैं। हाँ, प्रजा पशु पक्षी भी प्रजा माने जाते हैं, परंतु अगर मनुष्य समाज में देखा जाए तो एक राजा है और प्रजा में कोई व्यक्ति है, दोनों को भोजन चाहिए खाने के लिए, दोनों के दो हाथ हैं, पैर हैं, दोनों सोते हैं, दोनों जागते हैं, दिखने में एक समान दिखते हैं, तो केवल राजा को ही सम्मानित क्यों किया जाता है? क्या कारण है कि राजा सम्मान के योग्य है? कारण ये है कि राजा को नरदेव कहते हैं, वो भगवान का प्रतिनिधि है, नर रूप में देव या भगवान का प्रतिनिधि, इसलिए उसको नरदेव कहते हैं। तो उसे चाहिए कि वो भगवान का प्रतिनिधित्व करे और प्रतिनिधित्व करते हुए प्रजा को संभाले, प्रजा का भरण पोषण करे, प्रजा को धर्म के मार्ग में ले चले, भगवान के मार्ग में ले चले, भगवान का जो कार्य है उसको संपन्न करे। तो जैसे भगवान को सम्मान दिया जाता है उसी प्रकार से राजा को सम्मान देना चाहिए। तो भगवान को क्यों सम्मान दिया जाता है? अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि भगवान भी व्यक्ति हैं, हम भी व्यक्ति हैं, भगवान चेतन हैं, हम भी चेतन हैं, भगवान नित्य हैं, हम भी नित्य हैं, तो भगवान को क्यों सम्मान देना चाहिए? क्या कारण है इसका, कोई बता सकते हैं? ऐसे तर्क करने वाले लोग बहुत हैं ना, तो हमें इसका सही सही उत्तर देने के लिए सक्षम होना चाहिए पूरी तरह से। तो क्या कारण है? वो सब अन्यों का पालन करते हैं, ये सही उत्तर है। कठोपनिषद में बताया गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। नित्यो नित्यानाम, भगवान नित्य व्यक्ति हैं, नित्य मतलब शाश्वत, और ऐसे कई हैं, बहुवचन नित्यानाम, नित्य मतलब एक वचन, नित्यानाम मतलब बहुवचन, तो एक नित्य हैं जो भगवान हैं, और नित्यानाम मतलब ऐसे कई जीव हैं जो भी नित्य हैं, असंख्य हैं ये जीव। उसी प्रकार से चेतनस चेतनानाम, चेतनस भी एक वचन है, चेतनानाम भी ये बहुवचन है, तो भगवान चेतन है और सारे जीव भी चेतन है, दोनों भगवान और जीव नित्य हैं और चेतन हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एको बहुनाम, एको मतलब वो एक भगवान, बहुनाम उन अन्यों को क्या करते हैं? विदधाति कामान, उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, सप्लाई जो भी उनको आवश्यक है वो सप्लाई करते हैं, वो प्रदान करते हैं। तो मूल सारी आवश्यकताओं को प्रदान करने वाले व्यक्ति हैं भगवान, अन्यों का पालन पोषण करने वाले हैं भगवान। इसलिए दोनों को, जीव को और भगवान को कभी समान नहीं मानना चाहिए, हालांकि दोनों नित्य हैं, दोनों चेतन हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहां भगवान ने हम सबके लिए समुद्र बनाए हैं, समुद्र में बहुत सा पानी है, तो उसमें नमक भी डाला है भगवान ने, नमकीन है ना पानी, हम उसको पी सकते हैं? नहीं पी सकते, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए, उसको टिकाऊ रखने के लिए भगवान ने नमक मिला लिया है ताकि वो पानी ठीक ठाक रहे हमेशा। लेकिन जहां पीने का प्रश्न आता है तो भगवान ने उसके लिए भी इंतजाम किया है। क्या इंतजाम किया है? सूरज है। सूरज क्या करता है? समुद्र से पानी को खींच लेता है वाफ रूप में, और फिर बादल में परिवर्तित हो जाता है, और फिर वही बादल भूमि के ऊपर, जमीन के ऊपर आता है और वर्षा होती है, और वर्षा से नदियां बहने लगती हैं, सरोवर भर जाते हैं, और जो कुंड हैं और कुएं हैं वो भर जाते हैं, और उसमें मीठा पानी होता है, तो वो मीठा पानी हम पीते हैं। है वही पानी, समुद्र का पानी जो सूरज ने खींच के यहां हमें दिया है। तो भगवान ने हर चीज की व्यवस्था की है हमारे लिए, पानी का स्टॉक रखा है वहां पर समुद्र में, यहां कम हो जाए तो वहां से आ सकता है। लेकिन जब मनुष्य पाप करता है, यज्ञ नहीं करता, तो फिर ये जो साइकिल है, ये जो व्यवस्था है, इसमें एक असंतुलन आ जाता है, गड़बड़ी आ जाती है और इसकी वजह से यहाँ पानी कम हो जाता है, मीठा पानी कम हो जाता है, खारा पानी बढ़ जाता है, समुद्र का पानी बढ़ता है। आजकल ऐसे ही हो रहा है। आप में से जो इस आज के भौगोलिक अवस्था को जानते हैं, आप तो परिचित होंगे कि अभी ऐसे बताते हैं वैज्ञानिक लोग कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अंग्रेजी में इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सब जगह तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, आधा डिग्री, एक डिग्री, धीरे धीरे धीरे। और क्यों बढ़ रहा है? कई कारण है इसके, और इसकी वजह से जो पृथ्वी के उत्तर भाग में और दक्षिण भाग में कोने में जो बर्फ है, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े हैं जिनको ग्लेशियर कहते हैं, ये पिघल रहे हैं धीरे धीरे। जैसे वो पिघल रहे हैं तो पानी समुद्र में बढ़ते जा रहा है, समुद्र बढ़ते पानी बढ़ते जा रहा है, तो अभी धीरे धीरे से जो समुद्र के तट पे जो भूमि है वो नीचे पानी में चलती जा रही है। तो समुद्र का पानी बढ़ते जा रहा है और दूसरी ओर यहां पर हम क्या देख रहे हैं, बरसात की कमी है, पीने के लिए पानी नहीं है, खारा पानी बढ़ते जा रहा है लेकिन पीने वाला मीठा पानी कम होते जा रहा है। मतलब संतुलन बिगड़ रहा है पृथ्वी में। ऐसा क्यों हो रहा है? यज्ञ नहीं कर रहे हैं प्रजा, राजा और प्रजा दोनों एक जैसे भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ने ये सब व्यवस्था परिपूर्ण रूप से किया हुआ है, इसलिए वो विशेष है, इसलिए हमारे सम्मान और आराधना के योग्य हैं, पात्र हैं, इसलिए भगवान को सम्मान किया जाता है। तो भगवान के जो प्रतिनिधि हैं राजा, उनको भी सम्मान किया जाना चाहिए, एक साधारण व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। तो कोई कहेगा कि ठीक है भगवान तो भगवान है ना, लेकिन राजा तो व्यक्ति है। तो ठीक जैसे एक गुरु को, एक सद्गुरु को सम्मान करना चाहिए, हालांकि वो मनुष्य है, भगवान की तरह ही सम्मान करना चाहिए, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे। तो उसी प्रकार से राजा भी, श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में बताते हैं, आचार्यम माम विजानीयाम नाव मन्येत कर्हिचित। आचार्य जो होते हैं उनको कभी भी साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, न अवमन्येत कर्हिचित, अपमान नहीं करना चाहिए, कभी साधारण व्यक्ति नहीं मानना चाहिए उनको। क्या मानना चाहिए? उनको समझना चाहिए कि माम विजानीयाम, कि मुझसे ये अभिन्न है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो गुरु होते हैं वो भगवान होते हैं, लेकिन भगवान के समान होते हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं और भगवान जैसे ही उनको सम्मान करना चाहिए, हालांकि वो भी एक मनुष्य है। तो ठीक उसी प्रकार से राजा ये भी एक मनुष्य है, फिर भी नारदेव है, भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, भगवान के कार्य को संपन्न करता है, इसलिए वो सम्मान के पात्र है। तो इस प्रकार से राजा को उसी प्रकार से सम्मान देना चाहिए। जब राजा अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाएगा, लेकिन अगर राजा ही दुष्ट हो जाए, अगर राजा भगवान का सही रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करे, भगवान के कार्य को संपन्न करने के बजाय बगैर वो अपना ही कोई कार्य संपन्न करने का प्रयास करे, तो क्या होगा? उपद्रव हो जाएगा सारे समाज में। अगर राजा ही सोचे कि मैं भगवान का प्रतिनिधि नहीं हूं, भगवान का सेवक नहीं हूं, बल्कि मैं ही भगवान हूं और ये सब मेरी निजी संपत्ति है, मेरा राज्य, मेरी प्रजा, ये जितना भी धन है, भूमि है, सब कुछ ये मेरा है। वास्तव में जो धर्मशास्त्र में जो कानून, कायदा कानून बनाया हुआ है मनुष्य समाज में, उसमें एक कानून ये है कि सारी भूमि राजा की है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हम ये मानते हैं कि सारी भूमि भगवान की है, सब भूमि गोपाल की, ऐसा बोलते हैं ना, सब भूमि गोपाल की, भगवान की है। लेकिन क्योंकि भगवान हमारे सामने उपस्थित नहीं है, इन स्थूल आंखों के सामने उपस्थित नहीं है, एक मनुष्य की तरह। इसलिए राजा जो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं वो इस भूमि के मालिक माने जाते हैं, और फिर राजा इस जमीन को भूमि को बांटते हैं और वैश्यों को देते हैं कि ठीक है आप कृषि कीजिए, गोरक्षा कीजिए, वाणिज्य कीजिए, फिर आप कर दीजिए। फिर कर से जो कर स्वीकार करते हैं राजा वैश्यों से, उससे वो क्या करते हैं, सारे प्रजा का भरण पोषण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, समाज कल्याण के कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से राजा जो है वो मालिक माना जाता है, परंतु राजा को पता होना चाहिए कि वास्तव में मैं मालिक नहीं हूं, मालिक तो केवल भगवान है। लेकिन जब राजा इस बात को भूल जाता है कि मैं मालिक नहीं हूं, भगवान मालिक है, मैं ही मालिक हूं, ऐसे सोचने लगता है तो गड़बड़ हो जाती है। फिर वो भोगी बन जाता है, जो भगवान के संपत्ति का भोग करना शुरू कर देता है तो उपद्रव पैदा हो जाता है, भगवान ही बनने का प्रयास करता है वो। आजकल तो ये एक सामान्य बात हो गई है, हर नेता भोगी बन रहा है, प्राय ऐसे नेता दिखने में आते हैं। विरला ही कोई ऐसा नेता मिलेगा जो स्वार्थी नहीं है, जो केवल प्रजा के लिए ही जी रहा है। और इतिहास में भी ऐसे हुए हैं, ज्यादातर राज ऋषि हुआ करते थे वैदिक काल में, लेकिन एक आध यहां वहां ऐसे भी राजा हो जाते थे जो ऐसे ऐसे दुष्ट थे, जैसे राजा वेन। राजा वेन ये महाराज अंग के पुत्र थे। महाराज अंग वैसे एक धर्मपरायण राजा थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य था कि उनको ऐसे एक दुष्ट पुत्र मिला राजा वेन जैसा। ये बचपन से ही दुष्ट निकला, बड़ा राक्षसी वृत्ति का बच्चा था वो। वैसे आप जानते हैं कि बच्चे जो है वो भी थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ ना कुछ आनंद लेते हैं दूसरों को कष्ट देने में, कभी चींटी को लेंगे, कुछ ऐसे ऐसे करेंगे, है ना। इसलिए मांडव्य मुनि थे एक, मांडव्य मुनि को ऐसे एक शाप मिला था, शाप नहीं उसको कर्म का फल मिला था। मांडव्य मुनि के साथ ऐसे हुआ कि अचानक जब वो अपने आश्रम में थे तो राजा के सिपाही आए और उनको गिरफ्तार कर लिया और कहा कि आपने चोरी की है इसलिए आपको दंड दिया जाएगा। थोड़े चोर जो असली चोर हैं वो आके उनके आश्रम में छुप गए थे। मांडव्य मुनि जो है वो तो ध्यान में मग्न थे, उनको कुछ पता नहीं था, लेकिन राजा के सिपाहियों ने सोचा कि ये चोर इधर आए हैं, यही चोर है, ढोंग कर रहा है ऋषि बनने का, तो उसको पकड़ लिया। सूली पर चढ़ाने वाले थे और जैसे चढ़ाने वाले थे तो राजा तक खबर पहुंची, तो राजा वहां दौड़ते हुए आए और राजा ने देखा, अरे ये मांडव्य मुनि है और मेरे सैनिकों ने ऐसे दंड देने का प्रयास किया है, बस अभी अभी उनकी मृत्यु होने वाली है। तो सैनिकों को भगा दिया, उन्होंने कहा क्या तुम मूर्ख लोग हो, तुम जानते नहीं ये कौन है। तो उन्होंने बहुत क्षमा याचना की, तो मांडव्य मुनि ने कहा नहीं, तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो, तुम्हारा दोष नहीं है, दोष यमराज का है। तो उसने मुझे ऐसे क्यों एक शाप दिया, ऐसे क्यों मुझे ये एक सजा दी, जबकि मेरे कोई गलती नहीं थी। तो यमराज आए तो यमराज ने कहा, वैसे आप जब बच्चे थे ना, आपने एक नौकीले एक वस्तु से एक कीड़े को या एक जंतु को आपने मारने का प्रयास किया था, इसलिए आपको ऐसी एक नौकीली वस्तु से आपको छेद किया जा रहा है, इसलिए ये आपको सजा मिल रही थी, ये कर्म का फल है आपको। तो मांडव मुनि ने कहा कि आप कैसे हैं, आपकी बुद्धि कैसी है, जो बचपन में जो बच्चा करता है वो तो मासूम होता है, उसको आप सजा दे रहे हो, उसको तो पता नहीं है पाप क्या क्या है, पुण्य क्या है, सही क्या गलत क्या, तो बचपन में किए हुए पाप के लिए आप इतनी कड़क सजा दे रहे हैं, कड़ी सजा दे रही है, तो ठीक नहीं है, आपको हम शाप देते हैं कि आप शूद्र बन जाएंगे पृथ्वी लोक के ऊपर। तो कौन बने, राजा विदुर बने, धृतराष्ट्र के भाई। तो खैर कभी कभी बचपन में भी ऐसे हम देखते हैं कि हालांकि बच्चे दुष्ट नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसी एक वृत्ति रहती है उनकी। लेकिन महाराज वेन ऐसे एक साधारण बच्चे की तरह दुष्ट नहीं थे, वो तो वाकई दुष्ट थे। और अपने मित्रों को लेकर कभी वो नदी में फेंक देते थे, कभी तलवार लेकर उनका गर्दन काट देते थे। ऐसे सब कार्य बचपन से ही शुरू किया उन्होंने, और बचपन से ही राजा अंग जो है वो बहुत सुधारने की कोशिश करते थे राजा वेन को, राजकुमार को। कभी डांटते थे, कभी कुछ क्या 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 नहीं किया उन्होंने। लेकिन वेन जो थे वो कुत्ते के दुम की तरह थे, सुधरने का नाम नहीं लेते थे। बहुत कुछ प्रयास किया महाराज अंग ने, लेकिन अब वो बड़े भी हो गए, उनका अत्याचार बढ़ गया, और महाराज अंग सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए ये इस लड़के के साथ। फिर सोचते सोचते उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। सोचा, ये भगवान की कृपा मेरे ऊपर है कि ऐसा लड़का मुझे दे दिया कि मैं संसार से इतना हैरान हो गया हूं, इतना परेशान हो गया कि अब ये आसानी से मैं विरक्त हो सकता हूं दुनिया से। हमारे आसपास सभी लोग बहुत हमें प्रेम करते हैं, तो हम कैसे वैराग्य हो सकता है? हम तो आसक्त हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया से। अरे ये मेरे भाई हैं, मेरे पति हैं, मेरे पत्नी हैं, मेरे माता पिता हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, सभी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और ये प्रेम जो है हमारे बंधन का कारण बन जाता है। जब हमारे निज जन ही हमसे द्वेष करने का काम करने शुरू करेंगे, तब वैराग्य उत्पन्न हो सकता है जीवन में। जब हम परेशान हैरान हो जाएंगे इस दुनिया के संबंधों से, हम समझ जाएंगे कि ठीक है, ये दुनिया में कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है। तो महाराज अंग ने भी ऐसे सोचा और बीच रात में एक बार अपनी पत्नी को भी नहीं बताते हुए निकल पड़े, जंगल में चले गए, और किसी को पता नहीं चला वो कहाँ गए, कैसे गए। और वो निकल कर सीधे जंगल में गए और कभी आए नहीं। फिर अंत तक वहीं पर वो जंगल में रहे। उधर ब्राह्मणों ने देखा कि अब राज्य में कोई राजा नहीं है। राजा नहीं है तो ये विकट परिस्थिति है, क्योंकि राजा का होना तो आवश्यक है। और उधर चोर डाकुओं ने देखा कि कोई राजा नहीं है, तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, और सारी प्रजा परेशान हो गई, क्योंकि कोई राजा नहीं, चोर डाकू बढ़ रहे हैं, सब लूट रहे हैं, खून खराबा हो रहा है। तो ब्राह्मण लोग जानते थे कि ये वेन दुष्ट है, फिर भी उन्होंने बहुत सोचा, और कोई तो सामने है नहीं, राजा नहीं होने से अच्छा कोई दुष्ट राजा हो। अगर अच्छा राजा हो जो धार्मिक है तो सबसे अच्छा, लेकिन सामने जब कोई धार्मिक व्यक्ति है नहीं, तो भले दुष्ट राजा। जैसे कहावत है कि मामा नहीं होने से बजाय एक अंधा मामा। अंधा है मामा, लेकिन मामा तो है। तो उसी प्रकार से राजा बड़ा दुष्ट हो, कोई बात नहीं, कि राजा तो है कम से कम राज्य में। अगर राजा ही नहीं हो राज्य में, तो राज्य चलेगा कैसे? तो वेन जो है बहुत दुष्ट था। उसने सारे धार्मिक क्रियाओं को बंद कर दिया और ये घोषणा कर दी कि सारे यज्ञ जो हैं वो बंद होने चाहिए, जितने भी आहुति अर्पण किए जाते हैं अग्नि में वो भी बंद हो जाने चाहिए, मंदिरों में जितनी भी सेवा हो रही, अर्चना हो रही है, सब बंद हो जाने चाहिए, वेदों का पठन है बंद हो जाना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने जब ये देखा कि सोचा कि अब क्या किया जाए, आपस में सारे ब्राह्मण मिले, उनकी एक सभा हुई, और उस सभा में मिलकर वो थोड़े गुप्त रूप से चर्चा करने लगे। और उस जमाने में बातें गुप्त रहती भी थी, ऐसा नहीं कि थोड़े लोग मीटिंग में बैठे हैं, चार बैठे हैं और फिर बात सब जगह फैल जाती है, आजकल परेशानी होती है। यहाँ सरकार में हम देखते हैं, वो आपस में मंत्रियों में कुछ मीटिंग करते हैं, कोई पत्रकारों को जाके कुछ अंदर की बात बता देता है, फिर उत्पात हो जाता है सब जगह, किसने बताया, क्या किया। आजकल किसी चीज को गुप्त रखना बहुत मुश्किल है, वो पेट में रहता नहीं, गुप्त बात निकल ही आती है। कलयुग में खास करके ये शक्ति नहीं होती है लोगों को कुछ गुप्त चीज गुप्त रखने के लिए। बल्कि ऐसे बताया जाता है कि आपको किसी चीज को फैलाना है जल्दी से, तो किसी को बताना चाहिए, किसी को बोला नहीं, देखो एक गुप्त बात है, तो जरूर वो आदमी जाके कहीं दूसरे को बताएगा, 10 लोगों को बताएगा, सबको बोलेगा किसी को बोलना नहीं, और वो भी आदमी आगे चल के ऐसे ही बोलेगा किसी को बोलना नहीं। तो इन ब्राह्मणों ने गुप्त सभा बुलाई ताकि राजा के कान में कुछ पहुंचे नहीं कि क्या चर्चा हो रही है, और आपस में एक सोचने लगे, कहने लगे कि ये राजा वेन, इसने ऐसे हरकत की है कि सारे यज्ञ बंद कर दिए, सारे मंदिरों में सेवा बंद कर दी, सारे वेदों का पाठ होना बंद करा दिया, अभी हमारा कर्तव्य है कि हम इसको सुधारें, हालांकि इसको सुधारना बहुत मुश्किल है, फिर भी हमें प्रयास तो करना चाहिए, और अगर हमारे प्रयास करने के बाद भी ये दुष्ट अगर सुधरा नहीं तो उसको हमें मारना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं रहेगा। तो वो सब एकत्र होकर एक मिलजुल कर सब आए राजा वेन के सामने। पहले तो राजा वेन की प्रशंसा की कि हे राजा, देखिए आप तो इस पृथ्वी के राजा हैं, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, और अगर आप प्रजा के को अच्छी तरह से संभालेंगे तो देखिए भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी, तो कृपया आप ऐसे यज्ञ आदि बंद नहीं कीजिए, इससे सारे समाज में उत्पात हो जाएगा और आपको आपके ऊपर भी ये बड़ा पाप हो जाएगा। तो ऐसे बड़े प्रेम से, नम्रता से ये ब्राह्मण राजा वेन को समझा रहे थे। राजा वेन उल्टा क्रोधित हो गया। चाणक्य पंडित ऐसा कहते हैं कि किसी मूर्ख व्यक्ति को अच्छा उपदेश जब दिया जाता है तो वो ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जैसे एक जहरीले सांप को दूध पिलाया जाता है तो उसका विष बढ़ जाता है। तो राजा वेन बहुत गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर कहने लगा कि अरे आप लोग एक ऐसे स्त्री के बराबर हो जो अपने पति को छोड़ के एक दूसरे पुरुष के पास गई है, क्यों? क्योंकि पति है भरण पोषण कराने वाला, लेकिन वो किसी दूसरे पुरुष के पास गई है, उसी प्रकार से भरण पोषण आप सबका करने वाला मैं हूं, और मुझे छोड़कर आप कोई नकली भगवान के पास जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं शास्त्रों में क्या लिखा है कि जितने भी देवता हैं वो सब राजा के शरीर में निवास करते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो आप सोच रहे हैं कि जो है इंद्र ये हमको वर्षा देते हैं, सूरज हमको रोशनी देते हैं, उष्णता देते हैं वगैरह, लेकिन ये सब तो राजा के शरीर में है। तो जब राजा आपके सामने है तो कहां कोई देवताओं के लिए आपको यज्ञ करने की आवश्यकता है, बल्कि ये सब मैं ही भगवान हूं, इसलिए आप मेरी उपासना करो, मंदिरों में जाने की क्या जरूरत है, भगवान के विग्रह के रहने की क्या आवश्यकता है, जहां मूर्तिमान भगवान आपके सामने खड़े हैं तो यज्ञ मेरे लिए करिए, ये कौन है विष्णु और कौन क्या है, ये भगवान क्या है। तो फिर ब्राह्मणों को बड़ा गुस्सा आया, अब तक वो सहन करते रहे, लेकिन इस तरह से जब राजा वेन बोलने लगा तो उन्होंने केवल अपने हुंकार मात्र से राजा वेन को मार दिया। ब्रह्म तेज इसको कहते हैं, ब्राह्मणों का तेज, ब्रह्म शक्ति ऐसी होती थी कि केवल हुंकार मात्र से वो मार सकते थे अन्यों को। आजकल कोई भी व्यक्ति हूं हूं जितना भी करे कुछ होगा नहीं, अपने हाथ पैर भी चलाए तो कुछ होगा नहीं, लेकिन पहले जमाने में ब्राह्मण थे, केवल ऐसा कह के वो लोगों की हत्या करा सकते थे। केवल एक आदमी की हत्या क्या, वशिष्ठ मुनि ने राजा विश्वामित्र के सारे सेना को नष्ट कर दिया केवल एक हुंकार मात्र से, और इसको देखकर राजा विश्वामित्र के मन में लालसा हुई कि मैं भी एक ब्राह्मण बनना चाहता हूं। अब मैं तो क्षत्रिय हूं, मेरी इतनी शक्ति है, मेरे इतने अस्त्र शस्त्र हैं, शारीरिक बल है, लेकिन ये एक ब्राह्मण के सामने मेरी सारी शक्ति कहीं की भी नहीं रही, एक हुंकार से उसने मेरे सारे सेना को और सब कुछ को नष्ट कर दिया, तो फिर मेरी शक्ति की क्या कीमत है, तो मैं भी ब्राह्मण बनना चाहता हूं, मैं भी ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। तो ये है उस काल का ब्रह्म तेज। आजकल ना कि किसी का ब्रह्म कोई ब्राह्मण है ना वो तेज है किसी का। तो खैर राजा वेन को इसलिए उन्होंने खत्म कर दिया। तो ऐसे राजा वेन, अभी आजकल राजा वेन के अनुयायी बहुत सारे हैं, उनके शिष्य बहुत भरे हैं, सारे पृथ्वी लोक में उनको गुरु मानने वाले, उनके परंपरा में आने वाले कितने सारे नेता आज पृथ्वी भर में मिलते हैं, जो अपने आप को भोक्ता समझते हैं, वो सोचते हैं कि मेरी भूमि है, मेरा अधिकार है प्रजा का शोषण करना, प्रजा का भरण पोषण करना, प्रजा की रक्षा करना नहीं, प्रजा का शोषण करना, ये कार्य हो गया है। तो फिर जब राजा अपना सही कर्तव्य नहीं निभाता है, भगवान का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है, भगवान के कार्य को संपन्न नहीं करता है, बल्कि अपने स्वार्थ के कार्य को, एजेंडा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, तो वो सम्मान का पात्र नहीं है, वो सम्मान का योग्य नहीं है। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले जमाने में जो राजतंत्र हुआ करता था वो आज खत्म हो चुका है, क्योंकि प्रामाणिक राजा रहे नहीं तो राजतंत्र रहेगा कैसे। और धीरे धीरे, क्योंकि जैसे कलयुग बढ़ता गया, ब्राह्मण रहे नहीं, जब ब्राह्मण रहे नहीं तो मार्गदर्शन कैसे करेंगे क्षत्रियों को, तो क्षत्रिय भी दुष्ट होते गए। जब तक ब्राह्मण हैं, क्षत्रियों को वश में रख सकते थे, जैसे ब्राह्मणों ने वेन को वश में रखने का प्रयास किया, जब वेन सीमा से बाहर चले गए तो फिर खत्म कर दिया। लेकिन जब ब्राह्मण ही नहीं रहे तो क्षत्रियों को वश में करने वाला, क्षत्रियों को मार्गदर्शन देने वाला कौन है, कोई नहीं। तो ब्राह्मणों का पतन हो गया, फिर क्षत्रिय जो है वो दुष्ट होने लगे, तो फिर रहा क्या समाज में। समाज में फिर कोई एक शांति या भक्ति का वातावरण भला कैसे हो सकता है। तो इसलिए धीरे धीरे से ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों दोनों कमजोर होते गए। रहे वैश्य, वैश्य बेचारे क्या करेंगे, वो अपने व्यापार में है, वो उनको पैसा लेन देन में अपना सारा समय चले जाता है, तो रहे कौन, शूद्र। तो शूद्र जब उनको कोई अच्छा मालिक नहीं मिलता है और जो उनका अच्छी तरह से देखभाल नहीं करे, वो विद्रोह करते हैं। शूद्र का काम है कि जब उसका भरण पोषण, उसका देखरेख अच्छी तरह से नहीं होता, वो विद्रोह करता है। हम देखते ना आजकल हड़ताल, स्ट्राइक, ये सब चलता है ना, तो ऐसे होता है। तो फिर क्या हो गया, जब क्षत्रियों का पतन हो गया, ब्राह्मणों का पतन हो गया, वैश्य बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं पैसे कमाने में, तो शूद्रों ने सब सारे समाज को टेक ओवर कर लिया। सारे समाज में अब शूद्र ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आजकल ये साम्यवाद वगैरह ऐसे दर्शन, ऐसे फिलॉसफी जो है वो ज्यादा बढ़े हुए हैं। जो आजकल साम्यवाद में शूद्रों का प्राधान्य है और इसको हम श्रेष्ठ समाज समझते हैं, इसलिए भारत में भी आजकल इनके साम्यवादी लोगों के बिना आजकल सरकार नहीं बन सकता है ना। तो मतलब शूद्र ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शूद्रों का देखभाल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि शूद्रों का शोषण होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि जब तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सही नहीं रहे, प्रामाणिक नहीं रहे, तो शूद्र कहां से प्रामाणिक रहेंगे, वो कैसी सेवा करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी बताया करते थे कि ये शूद्र जो है वो पैर के समान है, क्षत्रिय वो भुजाओं के समान है, वैश्य पेट के समान है, और ब्राह्मण सर के बराबर है, दिमाग। आदमी का पेट खराब हो गया तो कुछ तो हो सकता है, हाथ में चोट पहुंच गई फिर भी कुछ हो सकता है, पैर में भी चोट हो गई तो कुछ काम हो सकता है, लेकिन आदमी का दिमाग ही खराब हो गया तो क्या हो सकता है। आदमी का दिमाग जब खराब हो जाएगा तो वो ठीक से ना खाएगा, ना पिएगा, ना क्या करेगा, वो उत्पात ही करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये दशा आज की है, इसलिए राजतंत्र बिल्कुल नष्ट हो गया। आज भी हम नेपाल में देख रहे हैं, सारी प्रजा राजा के विरुद्ध आई है। वो चाहते हैं प्रजातंत्र, राजतंत्र नहीं चाहते, प्रजातंत्र चाहते हैं। प्रजातंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेसी। तो प्रभुपाद कहते हैं ये डेमोक्रेसी नहीं है, डेमन क्रेजी है। डेमन मतलब असुर, क्रेजी मतलब पागल। तो ये प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी, डेमन क्रेजी, ऐसे है जितने असुर वृत्ति के लोग सब पागल हो गए हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए सब कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए प्रजातंत्र अब आगे है और इसमें सबसे नीच चेतना वाले लोग सबसे ऊपर आ गए हैं, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है और प्रजातंत्र में संख्या का प्राधान्य है, संख्या का महत्व है, तत्व का महत्व नहीं है, क्वालिटी का महत्व नहीं है। पहले जब राजा हुआ करते थे, उनका उनका जो विचार, उनकी जो विचारधारा है वो इतनी शुद्ध हुआ करती थी, इतनी ऊंची हुआ करती थी, क्योंकि ब्राह्मण उनके साथ थे तो शूद्र वैश्य जो है वो केवल उनके पीछे पीछे चलते थे, बस श्रद्धा थी क्योंकि ये सब प्रामाणिक थे। तो शूद्रों को ज्ञान नहीं होता, शूद्रों को बुद्धि नहीं होती, लेकिन वही आगे बढ़ के नेता बन जाएं तो समाज की दशा क्या होगी। इसलिए आजकल राजतंत्र, प्रभुपाद जी कहते हैं, खत्म हो चुका है और आजकल सारे राजा वगैरह जो हैं वो बिल्कुल लोभी हो गए हैं। जैसे एक ढोंगी गुरु होते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु को भी भगवान तुल्य मानना चाहिए, परंतु गुरु अगर कहे कि मैं भगवान हूं तो वो गलत है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान या श्री कृष्ण वो सेव्य भगवान है जिनकी सेवा की जाती है, और गुरु हैं सेवक भगवान, वो जो कि भगवान की सेवा करते हैं। और क्योंकि वो इतनी अच्छी तरह से भगवान की सेवा करते हैं इसलिए उन्हें भी भगवान तुल्य सम्मान मिलता है। ऐसा नहीं कि वो खुद भगवान है, लेकिन अगर कोई ढोंगी गुरु हो जाए जो अपने आप को भगवान मानने लगे तो फिर क्या होता है, उत्पात हो जाता है समाज में। भक्ति विनोद ठाकुर जी के समय भी ऐसे एक राजा थे, ऐसे एक गुरु थे, तथाकथित गुरु, योगी था वो व्यक्ति, विशक्षेन नाम था उसका, और उसने अपने आप को महाविष्णु का अवतार घोषित किया था। और भक्ति विनोद ठाकुर उस समय जिलाधिकारी थे, तो उन्होंने जाके इस विशक्षेन योगी से टक्कर लिया और उसको खत्म कर दिया, उसके बाल काट दिए, क्योंकि उसकी योग शक्ति उसके बाल में थी, और उसके बाल कटवा कर उसे गिरफ्तार कराया था, जेल में रखा था, और उसकी वजह से उनको बहुत शरीर में तकलीफ हुई थी भक्ति विनोद ठाकुर को, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हिचकिचाए नहीं, पीछे हटे नहीं, वो डरे नहीं, और इस प्रकार से उन्होंने, वो एक आदर्श राजा का काम कर रहे थे। जिलाधिकारी जो होता है वो राजा का प्रतिनिधित्व करता है, तो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने ऐसे दुष्ट लोगों को रास्ते से हटा दिया है। और आजकल कल्कि अवतार भी हैं दक्षिण भारत में, गुरु हैं लेकिन अपने आप को अवतार मानते हैं। तो ऐसे जो आजकल ढोंगी गुरु हैं, जो लोभी राजा हैं, वो सब भर गए हैं। इसलिए सब सारे पृथ्वी में इतना गड़बड़ है, इतनी असंतुलित अवस्था चल रही है। तो कृष्ण का काम क्या है, इन सबको नष्ट करना। इसलिए यहां पर कुंती महारानी कहती है अवनिध्रुक राजन्य वंश दहन। तो पृथ्वी के ऊपर जो ऐसे उपद्रव पैदा करने वाले जो राजा हैं, उनका दहन, उनको नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। और फिर आगे कुंती महारानी कहती हैं अनपवर्ग वीर्य। अनपवर्ग वीर्य मतलब जिनका वीर्य, जिनका शौर्य कभी भी घटता नहीं है, कम नहीं होता। हम देखते हैं कि हम थोड़े समय के लिए शक्तिशाली रहते हैं जब हम युव अवस्था में रहते हैं, बचपन में शक्ति कम रहती है, बुढ़ापे में शक्ति कम रहती है, बीमारी में शक्ति कम रहती है, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान की शक्ति हर अवस्था में, हर समय, हर जगह में उतनी ही रहती है। जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में आए थे तो उस समय भी उनकी शक्ति उतनी ही थी जैसे कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर, जबकि वह पूरे 100-125 साल के थे, और बीच में 50 साल की आयु में भी भगवान कृष्ण की शक्ति इतनी ही है। जब हनुमान जी लंका गए थे पहली बार समुद्र को पार करके, तो उधर उन्होंने पूरा उत्पात कर दिया था सारे लंका को भस्म प्राय उन्होंने कर दिया था, जला डाला था। फिर इंद्रजीत ने पकड़ लिया हनुमान जी को, वैसे पकड़ तो नहीं लिया, हनुमान जी ने स्वीकार किया। वो ब्रह्मास्त्र का सम्मान, ब्रह्मा जी का सम्मान देना चाहते थे, वो खुद अपने आप को हवाले कर दिए उन्होंने। और इंद्रजीत को लगा कि मेरे अस्त्र की वजह से ये इसको मैंने पकड़ लिया है। तो हनुमान जी जब आए तो उनसे पूछा गया कि तुम कौन हो, क्योंकि देखा था हनुमान का कार्य क्या है, इसकी शक्ति कैसी है कि इस व्यक्ति ने सब जगह यह लंका में पूरा तहस नहस कर दिया है। एक बंदर है ये, एक बंदर ने आके इतना सब तहस नहस यहां पर किया है, ये है कौन? और जब ये सब चल रहा था तहस नहस होना, उस समय सभी लोग ये प्रश्न पूछ रहे थे कि है कौन ये बंदर, आया कहां से? और जब पकड़ा गया तो पहला प्रश्न से पूछा गया कि तुम हो कौन? और फिर हनुमान जी ने उत्तर दिया था, किसी को पता है? बड़ा प्रसिद्ध उत्तर है, रामदूत है, लेकिन वो श्लोक क्या है? दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य अक्लिष्ट कर्मणः। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बहुत शक्तिशाली हनुमान हूं, नहीं, सबसे पहले अपनी पहचान कैसे दी? दासो हम, मैं दास हूं, ये भक्त की पहचान। सबसे पहले ये कहता है कि मैं दास हूं। किसका दास हूं मैं? कौशलेन्द्रस्य, कौशल राज्य के इंद्र या राजा का मैं दास हूं, अस्य उनका, और उनका नाम क्या है? राम। मैं उस राम का दास हूं, रामस्य। और राम की पहचान क्या है? अक्लिष्ट कर्मणः, जो अपने कर्म में कभी थकते नहीं हैं। ये भगवान की पहचान है। भगवान में थकावट नाम की चीज नहीं है, क्योंकि उनकी शक्ति जो है वो उसमें कोई घटन नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि का सृजन करते आए हैं। कितनी बार किए हैं सृष्टि का सृजन और सृष्टि का पालन, सृष्टि का विनाश कितनी बार किए हैं? कोई गणना हो सकती है इसकी? अनादि काल से चलते आ रहा है और आगे अनंत काल तक चलेगा। लेकिन क्या भगवान थक गए हैं? अभी एक व्यक्ति है, एक घर छोटा सा बनाते बनाते वो थक जाता है ना? आप में से कई हैं जिन्होंने अपना घर बनाया होगा। आपने कितने भक्तों ने घर बनाया अपना अपना, हाथ ऊपर कीजिए, थोड़ा परिश्रम कराया है ना? तो घर बनाते बनाते क्या हालत हो जाती है? वहां जाके देखो सीमेंट कितना, ये लेबर वो चोरी नहीं कर रहा, देखो ये करो वो करो, कितना खर्चा, वो खर्चा बढ़ते जा रहा है क्या, कितना, फिर ये नगर पालिका से कोई अनुमति लो, ये लो वो लो, कितना सब इसमें है, करना पड़ता है। एक घर बना लिया, दो घर बाद में सोचते हैं जाने दो अभी बहुत हो गया, थक जाते हैं हम। लेकिन भगवान ने इतनी बार सृष्टि की रचना की, इसका पालन भी किया, विनाश भी किया। हम घर बनाते हैं तो नष्ट नहीं करते घर को। वो कौन सा है, मराठी में एक है ना, तू वेड़ा कुम्हार, क्या क्या है वो, ऐसे कुछ है ना, विठला तू वेड़ा कुम्हार। क्योंकि आप क्या करते हैं, आप वो मटका बनाते हैं फिर तोड़ देते हैं। अरे कैसे कुम्हार हो आप? कुम्हार मटका बनाता है फिर बेचता है, उससे कुछ लाभ लेता है ना। कुम्हार मटका बना के फिर तोड़ेगा, फिर बनाएगा, फिर तोड़ेगा, अरे ये कैसे है? इसलिए कहते हैं कि विठला आप क्या है, आप इस कुम्हार, ये मटके को, ब्रह्मांड को बनाते हैं तोड़ते हैं, बनाते हैं तोड़ते हैं। तो भगवान ऐसे करते आए हैं, सृष्टि को बनाते हैं नष्ट करते हैं, बनाते हैं नष्ट करते हैं, अनादिकाल से चल रहा है। थकावट नहीं हो रही है भगवान को? हम तो एक घर बनाकर थक जाते हैं। ये तो इतना विशाल ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इन सब को बनाने के बाद भी भगवान थकते नहीं, और बनाते और बनाते और ब्रह्मांड बनाओ। हर चीज में, हर कार्य में भगवान हमेशा ताजे रहते, उनकी शक्ति, उनका सौंदर्य, उनकी बुद्धि सब ताजी रहती है। स्यमंतक मणि की लीला में भगवान जब जांबवान से युद्ध कर रहे थे, मलयुद्ध कर रहे थे, कुश्ती कर रहे थे, जांबवान बहुत शक्तिशाली थे, हालांकि बूढ़े हो गए थे, अब फिर भी शक्तिशाली बहुत थे, और कुश्ती करते 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 उन्होंने देखा कि सामने वाला जो व्यक्ति है, ये क्षत्रिय है, प्रतिद्वंद्वी है हमारा, ये थक नहीं रहा है। और पूरे 28 दिन खत्म हो गए, तब जांबवान को पता चला कि ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो थक ही नहीं रहा है, तो युद्ध करते जा रहा है ये व्यक्ति। तो 28 दिन के बाद जो है उनको थोड़ा सा ट्यूबलाइट हुआ, अरे ये तो कौन है, ये तो मेरे भगवान है, आराध्य देव है मेरे, ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं युद्ध कर रहा था इनसे। ये भी भगवान की योजना थी, क्योंकि भगवान भी वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे, इसलिए जांबवान की यह सेवा थी जो भगवान ने बड़े आनंद से स्वीकार किया। तो ऐसे कितने ही उदाहरण हैं हम देख सकते हैं कि भगवान कभी थकते नहीं है, उनका वीर्य, उनका शौर्य अनपवर्ग घटता नहीं है। अनपवर्ग, तो पवर्ग शब्द आप जानते हैं, प्रभुपाद जी ने कई बार इस शब्द का के शब्द की व्याख्या की है। पवर्ग मतलब क्या है, ये भौतिक जगत को पवर्ग कहते हैं, प फ ब भ म, प मतलब परिश्रम, फ मतलब फेण, फिर ब बंधन, भ भय, और म मृत्यु। तो ये संसार की पहचान है, प फ ब भ म। ये संसार क्या है, अगर कोई पूछे संसार क्या है, उनको बताइए संसार है प फ ब भ म, बस यही है ये संसार, और कुछ है नहीं ये संसार के अंदर। कोई अगर सोचे कि संसार में राजा बनना चाहता हूं, ये होना चाहता हूं, बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, बहुत भोग करना चाहता हूं, उनको बताना चाहिए देखो भाई क्या कर रहे हो, ये है ये संसार केवल प फ ब भ म, तो क्यों ये सब करना चाहते हो, इससे क्या मिलने वाला है, केवल प फ ब भ म ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। सबको परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम किए बिना किसी को भी भोजन नहीं मिलता है। इसलिए भगवान कृष्ण भी गीता में बताते हैं, शरीर यत्रापि चतेन प्रसिद्धेद अकर्मणः, कि शरीर को बनाए रखने के लिए भी व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है, कर्म किए बगैर शरीर का भरण पोषण संभव नहीं है। उसी प्रकार से चाणक्य पंडित भी कहते हैं, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सिंह जो शेर जंगल का राजा है, सुप्तस्य वो अगर सो रहा है, मुखे मृगाः, क्या उसके मुख में पशु हिरण वगैरह आके जाएगा, भोजन आएगा उसको मुंह में, वो अगर सिंह सोचेगा मैं राजा हूं तो मैं सो जाऊंगा, मुंह खोल के रखूंगा, मेरा भोजन मुंह में आ जाएगा, तो ऐसे आएगा नहीं, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो राजा के लिए भी, राजा को भी परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि दूसरा राजा आके आक्रमण करेगा, जंगल के राजा को भी परिश्रम करना पड़ता है, राजा हो या रंक सभी को परिश्रम करना पड़ता है। केवल भगवान है जो आराम से बांसुरी बजाकर आनंद लेते हैं, बाकी सभी को परिश्रम ही परिश्रम, और फिर फेण, परिश्रम इतना करना पड़ता है कि मुंह से फेण निकलता है, और फिर हम ऐसे परिश्रम करते करते कभी पाप करते हैं, कभी पुण्य करते हैं, तो बंधन में अटक जाते हैं, कर्म बंधन में, और कर्म बंधन की वजह से मृत्यु होती है, भय होता है, क्योंकि आगे क्या होगा, क्या होगा पता नहीं किसी को। तो इस प्रकार से इसको पवर्ग कहते हैं। तो इसके विपरीत जो है, जिसका कभी घटन नहीं होता, उसको अपवर्ग कहते हैं या अनपवर्ग कहते हैं, जिसका घटन नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण को कुंती महारानी यहां अनपवर्ग वीर्य कह के संबोधित करती हैं। आगे उनको गोविंद शब्द कह के पुकारती हैं। गोविंद का मतलब क्या है, गायों को प्रसन्नता प्रदान करने वाला, गायों की रक्षा करने वाला, और इंद्रियों को भी प्रसन्न करने वाला। और बाद में कुंती महारानी कहती हैं, गो द्विज सुर आरती हर अवतार, अर्थ मतलब दुख कष्ट। तो गायों के गो, द्विज मतलब ब्राह्मण और सुर मतलब देवता या भक्त इनके कष्ट को हरने के लिए, दूर करने के लिए अवतार लेते हैं श्री कृष्ण। तो हे श्री कृष्ण, जो कि गौओं के, ब्राह्मणों के और भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूं। भगवान नमस्ते, आप भगवान ही हैं, इसलिए नमः अस्तु, नमः ते, नमोस्तुते मतलब हम आपको नमन करते हैं। हम ये हमारे दैनिक कार्यों में हमेशा लोगों को बोलते हैं नमस्ते, नमस्कार, लेकिन इसका मतलब क्या है? हम हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते, नमः अस्ते, मैं आपको नमन करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो कुंती महारानी कहती हैं, आप भगवान जो कि इन तीनों की विशेष करके रक्षा करने के लिए आते हैं। ऐसा मतलब ये नहीं कि अन्यों के प्रति भगवान लापरवाही करते हैं, अन्यों की रक्षा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन विशेष करके इन तीनों की रक्षा भगवान करते हैं। कौन है ये तीन? गाय, ब्राह्मण और भक्त। गाय तो मूल्यवान है मनुष्य समाज के लिए, ऐसे कौन से पशु है जो जीते जी हमको इतना लाभ प्रदान करे और मृत्यु के बाद ही बहुत लाभ प्रदान करे? जीते समय गाय हमको सबसे मूल्यवान खाद्य पदार्थ प्रदान करती है, जो कि क्या है? दूध है। गाय का दूध अमृत है, जो वास्तव में हमें दीर्घ आयु प्रदान कर सकती है और साथ साथ वो बुद्धि, सद्बुद्धि प्रदान कर सकती है, जिससे कि हम आध्यात्मिक विषयों को अच्छी तरह से समझें, जिससे हमारे मन का झुकाव आध्यात्मिक जीवन की ओर हो जाए। तो गाय का दूध इतना लाभदायक होता है। और जब गाय की मृत्यु हो जाती है तो गाय के शरीर का ऐसा कोई भी अंश नहीं है जो मनुष्य समाज के लिए लाभदायक नहीं है। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन चीजों के लिए गाय की हत्या करना घोर से घोर पाप है, परंतु अगर गाय की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसे लोग हैं जो उनके अंगों का अलग अलग उनके अंगों का उपयोग करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। उनके सींगों का उपयोग हो सकता है, उनकी चमड़ी का उपयोग हो सकता है, उनके खुरों का उपयोग हो सकता है और उनके पूंछ का उपयोग हो सकता है, हर एक भाग का उपयोग हो सकता है, उनके हड्डियों का उपयोग होता है। तो ऐसे पशु, ऐसे गाय जो हमारे माँ है, जो हमें दूध देती है, जिससे कि हमारा शरीर का भरण पोषण हो जाता है और आत्मा के, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें सद्बुद्धि मिलती है और जो मृत्यु के बाद भी हमें इतना सब देती है, ऐसे गाय के हम हत्या करेंगे तो ये कैसी सभ्यता है? तो कृष्ण स्वयं आते हैं गौओं की रक्षा करने के लिए, इसलिए उनका नाम है गोपाल। आगे ब्राह्मण जो है वो भी और भक्त भगवान के बहुत प्रिय हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मैं जगत हिताय कृष्णाय, मैं जगत के हित के लिए अवतीर्ण होता हूं, जगत को बचाने के लिए मैं आया हूं, मैं आता हूं, लेकिन जगत को बचाता हूं, लेकिन इससे ज्यादा किनको बचाता हूं? ब्राह्मण, ब्राह्मण हिताय, मैं ब्राह्मणों की रक्षा करता हूं, लेकिन ब्राह्मणों से भी ज्यादा किसकी रक्षा करता हूं? गो हिताय, गौओं की रक्षा में करता हूं। तो भगवान का यह विशेष अवतीर्ण होने का एक कारण है। और फिर कुंती महारानी कहती हैं योगेश्वर, योगेश्वर और अखिल गुरु हो। अखिल गुरु मतलब सारे ब्रह्मांड के आप ही गुरु हैं, उपदेश करने वाले हैं, और साथ साथ योगेश्वर, योगेश्वर मतलब योग शक्ति के स्वामी। इस प्रकार से कुंती महारानी अपनी प्रार्थना समाप्त करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये सारी प्रार्थना सुन ली और सुन के उन्होंने क्या किया, अगले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं। पृथयेत्थं कलपदैः परिणूताखिलोदयः मंदम जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया। सूत गोस्वामी ने कहा, अपनी महिमा वर्णन में चुने हुए शब्दों में कुंती द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर भगवान मंद मंद मुस्काए, मतलब हल्की मुस्कान की भगवान ने। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के ही समान मोहक थी। तो जो अभक्त होते हैं वो भगवान की जो योग शक्ति है, भगवान की जो ऐश्वर्य है, उससे प्रभावित होते हैं, उससे मोहित होते हैं। परंतु उससे ज्यादा मोहक है भगवान की हल्की मुस्कान। तो भगवान श्री कृष्ण ने कुंती महारानी से ये प्रार्थना स्वीकार की, और स्वीकार किया, ये क्या प्रमाण था, क्या सबूत था? हल्की मुस्कान से उन्होंने स्वीकार किया। ये हल्की मुस्कान भगवान की बहुत ही आकर्षक है, सर्व मोहक है, सब प्राणियों को मोह में डालने वाली, और विशेष करके भगवान के भक्त भगवान के इस मंद मंद मुस्कान को, इस हल्के से मुस्कान को बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि भगवान ऐसे हल्के मुस्कान करते समय सबसे अधिक सुंदर दिखते हैं, सबसे आकर्षक दिखते हैं। स्मेरम भंगी त्रय परिचिताम शाच विस्तीर्ण दृष्टिम। तो भगवान ऐसे स्मेरम ऐसे हल्की मुस्कान करते हैं तो उस समय वो बहुत ही आकर्षक दिखते हैं। इसलिए भगवान के भक्त ज्यादा भगवान की योग शक्ति के ऊपर परवाह नहीं करते। योग शक्ति से भी ज्यादा मोहक है भगवान की हल्की मुस्कान। इसलिए भगवान के भक्त केवल उनके इस सुंदर मुखारविंद, इनके सुंदर रूप के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। तो कुंती महारानी इन प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान के ऐश्वर्यों का एक लेश मात्र जो ऐश्वर्य है वो सबके सामने रखना चाहते थे। चुने हुए शब्दों से कुंती महारानी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। चुने हुए शब्द, विशेष करके शब्द चुनकर हमें भगवान की, भगवान का गुणगान करना चाहिए। तो हमें सीखना चाहिए कि कौन से शब्द चुनने चाहिए। जब हम कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने जाते हैं, जैसे हम राष्ट्रपति के पास गए, राजा के पास गए, तो हम बहुत सावधान होंगे ना, हम क्या बात कर रहे हैं। हम यूं ही जब किसी के साथ, दोस्त के साथ सड़क पे बात करते हैं, हम वैसे बात नहीं करेंगे, गिने चुने शब्दों में राजा के साथ बात करेंगे। तो किसी प्रकार से जब हम भगवान के सामने आते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो गिने चुने शब्दों से करने चाहिए, जैसे कि कुंती महारानी ने की। तो हमें कुंती महारानी जैसे भक्तों के पद चिन्हों में चलना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे भगवान का गुणगान किया जाता है, कैसे भगवान की स्तुति की जाती है। वैसे भगवान की स्तुति करना, ये हम इसके लिए समर्थ नहीं है। भगवान के ऐश्वर्य की सीमा नहीं है, उनके गुणों की सीमा नहीं है। हम कितना कर सकते हैं उनकी स्तुति? थोड़ा बहुत ही कर सकते हैं, और वो भी ठीक से नहीं कर सकते। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे एक पिता होता है, वो अपने बच्चे के तोतली बोली से भी प्रसन्न होता है, क्योंकि उस तोतली बोली के पीछे जो भाव है, पिता उसको स्वीकार करता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हमारे प्रार्थना को भी स्वीकार करते हैं, अगर वो भक्ति भाव से अर्पण किया हुआ हो तो। भले हम व्याकरण में ठीक से कुछ बोल नहीं रहे हैं, हमारा उच्चारण ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन सिद्धांत अनुसार भक्ति भाव से, सच्चे दिल से अगर हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान खुशी से उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। इस समय एक सुंदर श्लोक मुझे याद आ रहा है, जो चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को सुनाया जब केशव काश्मीरी की घटना हो रही थी। केशव काश्मीरी जानते हैं ना आप, वो तो बड़े विद्वान थे लेकिन घमंडी थे, भक्त नहीं थे, और चैतन्य महाप्रभु ने आखिर उनको हरा दिया वाद में। वो अवाक रह गए, उनकी बुद्धि बंद हो गई। तो जब पहली बार उनके शिष्यों ने उनसे कहा कि केशव काश्मीरी आए हैं बहुत बड़े बड़े विद्वान है वो। तो महाप्रभु जानते थे कि ये तो बहुत घमंडी है, तो वो कहने लगे, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयो तत्समं पुण्यम भावग्राही जनार्दन। अब जब हम कृष्ण को संबोधित करते हैं, कोई कहना चाहता है ओम कृष्णाय नमः, ठीक है ना, ओम कृष्णाय नमः कहते हैं ना। तो अब जब ऐसे ही हम विष्णु को संबोधित करना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे, ओम विष्णाय नमः? नहीं, जिसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है वो कहेगा ओम विष्णाय नमः, क्योंकि हम कृष्णाय नमः कहते हैं, लेकिन विष्णाय ठीक नहीं है, ठीक क्या है, विष्णवे, विष्णवे नमः, विष्णाय नमः नहीं। तो महाप्रभु कहते हैं मूर्खो वदति विष्णाय, जो मूर्ख व्यक्ति है जिसको ज्ञान नहीं है वो विष्णाय कह के कहेगा, भगवान को संबोधित करेगा। धीरो वदति विष्णवे, लेकिन जो धीर व्यक्ति है, जो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, वो कहेगा ओम विष्णवे नमः। उभयोस तत् समम पुण्यम, उभयोस मतलब दोनों, तत् समम पुण्यम, दोनों को एक समान ही फायदा होगा, लाभ होगा, पुण्य लाभ होगा भगवान के सामने। हालांकि एक ने गलत व्याकरण इस्तेमाल की है, दूसरे ने सही किया, एक पंडित है दूसरा पंडित नहीं है, फिर भी दोनों को उभयोस तत् समम पुण्यम, दोनों को समान रूप से लाभ प्राप्त होगा। क्यों ऐसे? क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन, भगवान दोनों के भाव को ग्रहण करते हैं। अगर दोनों ने सही भाव से वो स्तुति की हो भगवान की, भगवान का गुणगान किया हो, तो भगवान प्रसन्न होते हैं और उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से भले हमें संस्कृत भाषा आती हो या नहीं आती हो, हम कोई भी भाषा में भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान को कन्नड़ भी आता है, मराठी भी आता है, हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है, तमिल तेलुगु सब भाषा आते हैं भगवान को। तो कोई भी भाषा में भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं, भाव सही हो तो भगवान स्वीकार करेंगे। लेकिन भगवान को अन्य भाषाएं आती हैं इसलिए हम महान भक्तों की प्रार्थनाएं सीखेंगे नहीं, ऐसा नहीं। इन संस्कृत प्रार्थनाओं को भी सीखना हमारे लिए आवश्यक है, ब्रह्म संहिता है, कुंती महारानी की प्रार्थना है, शिक्षाष्टकम है इत्यादि, इन प्रार्थनाओं को हमें अच्छी तरह सीखना चाहिए, रोज बोलना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होंगे और फिर हमारे हृदय से ऐसे ही प्रार्थनाएं हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। श्रीमती कुंती महारानी की जय, श्री कुंती स्तुति की जय, श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो काफी देर हो गया, क्षमा कीजिए, तो यही समाप्त करते हैं। केवल एक दो प्रश्न हो तो हम लेंगे, नहीं तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ने प्रश्न किया है। अगर भगवान सब जीवों की इच्छा पूर्ण करते हैं तो भगवान की इच्छा कौन पूर्ण करते हैं, बताइए? भक्त, भक्त हैं जो भगवान की इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान की सारी शक्तियां हैं वो भी भगवान के भक्त ही हैं, और वो तत्पर रहते हैं भगवान की सेवा के लिए। वहां भगवान के धाम में सेवक या इस दुनिया के सेवक की तरह नहीं होते हैं, अंदर बॉस बिठाते उनको घंटी मार मार के थक जाते हैं, वो आता ही नहीं आदमी की कहां है, ऐसे नहीं है। भगवान को कुछ बोलना भी नहीं पड़ता है, भगवान के मन में विचार आ गया, सेवक ने उस काम को कर ही लिया, ऐसे सेवक होते हैं भगवान की। ये सब शक्तियां हैं भगवान की और सब तत्पर रहती हैं भगवान की सेवा में, हल्के से इशारा काफी है, भगवान के सेवक उनकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। बाइबल में भी कहावत है, लेट देयर बी लाइट एंड देयर वॉज लाइट। सृष्टि के समय भगवान ने इच्छा की कि रोशनी हो जाए, रोशनी हो गई। तो भगवान अपनी इच्छा मात्र से सब कुछ करते हैं, हमारे लिए ऐसा नहीं है, घर बन जाए वो हो जाए, नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता है। बल्कि साथ देने वाले के बाद अड़चन लगाने वाले बहुत हमको मिलते हैं, है ना, नहीं नहीं ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, ये बंधन है, ये कानून के खिलाफ है, ये इसके लिए इतना खर्चा होगा, ये होगा। लेकिन भगवान की शक्तियां सदा तत्पर उनकी सेवा में, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। अच्छा एक श्लोक रह गया क्या बीच में? हाँ? अच्छा ठीक है, पता नहीं कैसे एक श्लोक छूट गया बीच में। अच्छा ठीक है, इसको आज दोपहर में करेंगे फिर, ठीक है। अच्छा धन्यवाद, आपने ये हमको बताया, हमें याद नहीं था, हमें पता नहीं था कि एक श्लोक बीच में छूट गया है, तो आज दोपहर में इसकी चर्चा करेंगे। चलो एक समस्या हो गई, हम सोच रहे क्या अब आज बोलेंगे दोपहर में, तो आपने टॉपिक भी दे दिया शाम के लिए, हमको मन में नहीं आ रहा था क्या बोलेंगे, सोचा बैठ के जो आए मन में आए वो बोलेंगे। प्रश्न ये है कि आपने कहा कि हमारे निकट के जो लोग हैं अगर वो हमें बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो हम हमारे मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि घर में जाके झगड़ा करो कि नहीं हमें घर में हमें संबंधों को तोड़ देना है ताकि वैराग्य हो जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। घर में प्रेम हो तो उसको बिना वजह नष्ट नहीं कीजिए, प्रेम भरे संबंध रहने दीजिए, लेकिन इसको केवल कृष्ण में केंद्रित कीजिए बस। और समझिए कि ये हमारा आपस में परिवार में जो प्रेम है वो इसलिए है कि हम सब ने कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाया हुआ है, और हमको देखना चाहिए कि ये मेरे पति हैं, मेरे पत्नी हैं, मेरे बच्चे हैं, माता पिता भाई बहन हैं, ये सब कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हम इनसे ज्यादा प्रेम करते हैं। भगवान ने ही हमको हमें दिया है इनका संग, लेकिन ये मेरे पति मेरे पत्नी मेरे बच्चे नहीं है, ये किनके हैं? भगवान की संपत्ति है, मेरे नहीं है, केवल भगवान ने मेरे हवाले कर दिया है। प्रश्न आगे है कि अगर कोई वैष्णव हमसे प्रेम करता है एक बच्चे के रूप में तो फिर क्या ये ठीक है? जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, कुंती महारानी यही कहती है ना, उन्होंने पहले श्लोक में क्या कहा था, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंधी दृढ़ पांडुषु वृष्णिषु। उन्होंने कहा था कुंती महारानी ने कि मेरे स्वजनों के प्रति मेरे मन में जो आसक्ति उसको काट दीजिए। अब उनके स्वजन तो भक्त हैं, फिर भी वो कह रही है काटने के लिए आसक्ति, क्यों? क्योंकि वो उनको केवल वैष्णव के रूप में नहीं देख रही हैं, वो देख रही हैं कि ये मेरे लड़के हैं मेरे बच्चे हैं, इसलिए वो प्रेम ज्यादा है स्नेह ज्यादा है। तो कोई अगर हमसे प्रेम कर रहा है बच्चे के रूप में तो वो प्रेम भी केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये मेरा बच्चा है, वास्तव में अगर प्रेम ये है कि ये कृष्ण के भक्त हैं इसलिए हम प्रेम कर रहे हैं तो वो प्रेम अलग स्तर पे है। फिर भी जो भी हो, जो भी प्रेम हमारा है दूसरों के साथ, उसको केवल कृष्ण से जोड़ना चाहिए, कृष्ण से केंद्रित कर देना चाहिए, बस इतना ही है। हाँ माइक है नहीं? अच्छा हाँ प्रश्न ये है कि कल हमने सुना कि भक्ति तीन प्रकार की होती है, चार प्रकार की, एक है तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, सतोगुणी भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो दो भाग, त्रिगुण भक्ति, त्रिगुणमयी भक्ति, और निर्गुण भक्ति। तो प्रश्न ये है कि अभी अभी हम विश्लेषण करना शुरू करेंगे कि अरे ये भक्त लक्षण ऐसे दिख रहे हैं, ये तमोगुणी भक्त है, वो रजोगुणी भक्त है। नहीं, ऐसे हमें जजमेंट नहीं करना चाहिए। हम अदालत में नहीं बैठे हैं ये निर्णय लेने के लिए कि कौन किस तरह का भक्त है, कौन से स्तर पर पहुंचा हुआ है। ये निर्णय हमारा नहीं, ये भगवान करेंगे निर्णय। तो जब ऐसे विचार आते हैं हमें, तो हमें उनको दूर रखना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे कि श्री प्रभुपाद कहते हैं और अन्य वैष्णवाचार्य भी कहते हैं, थोड़ा बहुत विवेक तो होना ही चाहिए। हालांकि हम विश्लेषण ज्यादा नहीं कर रहे हैं, जजमेंट नहीं दे रहे हैं, फिर भी विश्लेषण होना आवश्यक है कि कौन प्रगतिशील भक्त हैं, कौन एडवांस डिवोटीज हैं। ये हमें समझना चाहिए, लक्षण मालूम होने चाहिए, नहीं तो हम सबको एक समान देखेंगे। जैसे हम कल कह रहे थे, खटमल और राजा को एक बना देंगे, दोनों सिंहासन पर बैठे हैं तो दोनों एक हो गए। तो थोड़ा विवेक तो होना चाहिए, समझना चाहिए। और अगर कोई वैष्णव ऐसा है जिसका चरित्र ठीक नहीं है, जिसकी आदतें बहुत बुरी हैं, तो उसको दूर से सम्मान करना चाहिए, लेकिन दूर से। ऐसे वैष्णव का संग लेकिन नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने भगवान कृष्ण को, श्री कृष्ण को भगवान माना है, तो वो वैष्णव है। भले वो शराबी हो या वो व्यभिचारी हो, भले वो डाकू हो, कुछ भी हो, लेकिन वो वैष्णव है, क्योंकि उसने श्री कृष्ण को परम सत्य मान लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यभिचारी शराबी डाकू के संग में हम जाएं, मन में ही उसको सम्मानित करें। उपदेशामृत में भी रूप गोस्वामी ऐसे ही कहते हैं। आप में से जो इच्छुक है उपदेशामृत पढ़ सकते हैं। तो हाँ, ये जरूर हमें देखना चाहिए कि थोड़े भक्तों से जो ज्यादा सिंसियर है, जो ज्यादा सच्चे हैं भक्ति में, हम उनके संग में ज्यादा जाएं, उनका संग ज्यादा करें, ताकि हम अच्छी प्रगति हम कर पाए। और साथ साथ हमें यह सोचना चाहिए, दूसरे भक्त कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हम तो सबसे नीचे वाले भक्त हैं। हमको ऐसा अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर भाव महत्वपूर्ण है, तो आचार संहिता का कितना महत्व है, कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? भाव एक बहाना नहीं है आचरण में ढीलापन लाने के लिए, नियमों को तोड़ने के लिए। ये नहीं है कि भाव के नाम पर हम कुछ भी करेंगे, नहीं। ऐसे कई बार होता है कि समय के पहले अपने आप को हम अगर सोचे कि हम उस स्तर पे हैं, जबकि हम नहीं हैं, तो ऐसे सब हम नहीं कर सकते। जैसे एक भक्त थे, तो वो जाके भगवान के विग्रह से आलिंगन करते थे, पुजारी थे, आलिंगन करते थे, ऊपर चढ़ के आलिंगन करना। बोले मेरा भाव है। भाव हो सकता है, लेकिन नियम है, नियम का पालन करना जरूरी है। उस स्तर में जब नहीं है, तो ऐसे हम कार्य नहीं कर सकते। नियम का पालन करना जरूरी, भाव हमारे ठीक जगह में, हृदय में, लेकिन बाहर नियमों का पालन सख्ती से होना चाहिए। षड गोस्वामियों ने अपने स्वयं के उदाहरण से सिखाया है। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, संख्या पूर्वक सब कुछ करते थे, जब भी करते थे, दंडवत करते थे, सारे नियमों का पालन सही ढंग से करते थे। कभी नहीं सोचते थे कि मेरा भाव ऐसा है तो मैं नहीं करूंगा। तो नियमों का पालन सख्ती से करना चाहिए, साथ साथ भाव भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और नियमों का पालन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि हम धीरे धीरे से हृदय को शुद्ध करके भगवान के प्रति प्रेम जागृत करें हमारे मन में। ये नियमों का उद्देश्य है। रूप गोस्वामी ने कहा है कि दोनों प्रकार के नियम आग्रह नहीं होने चाहिए, नियम अग्रह और नियम आग्रह। न हमें नियमों को बेकार समझ के पालन नहीं करना चाहिए, और न ही हमें नियमों का इतना कट्टरता से पालन करना चाहिए कि हम भूल ही जाएं कि नियम किस लिए हैं। नियम का सही तरह से पालन करते करते भक्ति भाव का अनुशीलन हृदय में करना चाहिए, क्योंकि नियम का पालन करने का उद्देश्य है कि इस भक्ति भाव को जागृत करना, धीरे धीरे से हृदय को शुद्ध करना। जब तक हृदय शुद्ध नहीं है, भाव कहां से उत्पन्न होगा? जिस हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि है, तो सही भक्ति भाव जागृत नहीं हो सकता। तो नियमों का पालन करने से धीरे धीरे हृदय शुद्ध हो जाता है, और इस प्रकार से फिर भाव शनै शनै प्रकट होने लगता है। तो हमारे लिए दोनों आवश्यक हैं, साथ साथ चलने चाहिए। भगवान गौओं की रक्षा प्रमुख रूप से करते हैं, तो फिर आजकल गौओं की इतनी अधिक मात्रा में क्यों हत्या हो रही है? क्योंकि लोग अभी दुष्ट बने हैं और वैदिक संस्कृति को, वैदिक सभ्यता को नहीं जानते, कृष्ण भक्ति को नहीं जानते हैं, इसलिए भगवान ने हम सबके ऊपर छोड़ा है ये कार्य, उनका कार्य करने के लिए कि आप अच्छी तरह से गौ रक्षा करो, गौ सेवा करो, भगवान के, मेरे गायों की सेवा अच्छी तरह से आप सब करो। तो इसलिए गोकुल धाम में हमारे भक्त लोग गौओं की का देखभाल कर रहे हैं, उनको चराने ले जाते हैं, गौशाला में फिर देखभाल करते हैं। फिलहाल ही वृंदावन में हमने 10 दिन का कोर्स किया था भक्तों के लिए, हमारे गौशाला के भक्तों के लिए, और भारत में जितने भी इस्कॉन केंद्र हैं, जो गौशाला हैं, उनके भक्तों के लिए कोर्स किया था 7 दिन का। इसमें तरह तरह का ज्ञान दिया गया, कैसे गाय की सेवा करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। थोड़े बहुत डॉक्टर्स भी आए थे, गाय के डॉक्टर भी आए थे सिखाने के लिए कि बीमारियों का इलाज गाय में कैसे करना चाहिए। ये सारा ज्ञान आवश्यक है। तो यहां भी हम छोटे अपने स्केल में कर रहे हैं। आप में से कितने भक्तों ने यहां गोकुलधाम की गाय देखे हैं? कितने भक्तों ने नहीं देखा है आज तक? गांवों का दर्शन नहीं हुआ? ठीक है, एक दिन आप सब नए आए हैं, शायद इसलिए आप नहीं देख पाए। तो गायों का रक्षण करना ये बहुत जरूरी है। तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, भगवान का कार्य हमको करना है। भगवान की भक्ति करने हेतु क्या परिवार या निकट संबंधी से वैराग्य होना आवश्यक है? वैराग्य मतलब क्या है? कि ऐसा नहीं कि हम परिवार को छोड़ें, बाहरी रूप से हम हमारे सारे कर्तव्यों को अच्छी तरह से पालन करें, लेकिन अंदर से ये भाव रखें कि ये हमारी संपत्ति नहीं है, ये परिवार भगवान का है, ये भगवान के ये बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैं इनका देखभाल भले अच्छी तरह से करूंगा, ये भाव रख के हमें करना चाहिए। ठीक है, तो काफी समय हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज दोपहर को हम मिलेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।